हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तो कुसुम सरोवर के बिल्कुल पास में दो स्थान हैं, एक है श्याम कुटी, श्याम वन, और वहाँ पर सुंदर लीला है राधा रानी की, राधा रानी का श्रृंगार होता है वहाँ पर, और राधा रानी को रत्न सिंहासन पर वहाँ बिठाया जाता है, उनकी सेवा होती है। तो रत्न सिंहासन तो कहते हैं कि ब्रह्मासुर चुरा कर ले गया, लेकिन स्थान तो है वहाँ पर जहाँ पर राधा रानी को श्रृंगार करके रत्न सिंहासन पर विराजमान करते थे। एक रत्न कुंड भी है वहाँ पर, ये लीला हुआ करती थी, जिसके साक्षी है वो रत्न कुंड। और ऐसे गिरिराज के बहुत सुंदर सुंदर शिलाएँ आपके आसपास में मिलेंगी आपको। और एक सुंदर भगवान का चरण चिन्ह है वहाँ पर, देखा आपने, कृष्ण भगवान का चरण चिन्ह। आप लोगों को ये पता करना जरूरी है, हाँ आप लोग लिख के भी लो, गर्ग संहिता में लिखा है कि जहाँ पर भी आप कृष्ण के हस्त और पाद चिन्हों का दर्शन करते हैं, जहाँ पर भी, ब्रज में अनंत जगह पर है, काम में वन में बहुत जगह पर है, छोटी बठेन बड़ी बठेन में बहुत जगह पर है, नंदगांव में है, गोवर्धन में कई जगह पर है, बरसाने में कई जगह पर है, जगह जगह भगवान पे चरण चिन्ह है, राधा रानी के हैं, कृष्ण के हैं, बलराम के हैं। तो जहाँ कहीं भी आप राधा कृष्ण बलराम भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं, हस्त चिन्हों का दर्शन करते हैं, और भी उनके शरीर के ऊपर जितने साधन हैं उनके चिन्ह दर्शन करते हैं, उसको इस दोबारा दुनिया में जन्म लेना नहीं पड़ता है। क्योंकि वो काम्य वन में जब व्योमासुर को मार रहे थे भगवान, तो पृथ्वी कांप रही थी, इतना भयंकर घनघोर युद्ध हो रहा था। तो बलराम जी ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पृथ्वी को ऐसा दबाया और अपने ऊपर के शॉल को ऐसा गिराया और पृथ्वी को आश्वस्त किया, डोंट वरी, चिंता की कोई बात नहीं है। तो उनका चरण चिन्ह वहां तैयार हो गया, बलराम जी का चरण चिन्ह। और भगवान ने जब चलान लगाया आकाश में, क्योंकि युद्ध तो व्योमासुर था ना, व्योमासुर का मतलब क्या है, अवकाश, अवकाश में युद्ध हो रहा है, तो उस समय अवकाश में से पृथ्वी पर छलांग लगा रहे हैं, फिर अवकाश में उड़ रहे हैं, फिर छलांग लगा रहे हैं। तो उसमें एक बार जब भगवान ने छलांग लगाई तो वहां पर एक पर्वत है, हाँ पर्वत पर छलांग लगाई, ऐसे पृथ्वी पर गिर गए, आ गए तो घुटने और हाथ के बल से ऐसे रुके, और उनकी माला जो है ना, माला वो धड़ाड़ करके ऐसे लगी, तो माला हस्त और घुटने का चिन्ह पैदा हो गया उधर काम्य वन में। अद्भुत दर्शन है वो, बहुत अद्भुत दर्शन। भीमासुर की गुफा जिस पहाड़ में है ना, उस पहाड़ में, तो उस जगह का वर्णन जब गर्ग संहिता में आता है, तब गर्ग संहिताकार बताते हैं कि ये भगवान के हस्त और पाद चिन्हों के दर्शन का, स्पर्श का, प्रणाम का, स्मरण का महात्म्य है। तो वैसे आपके बाजू में यहाँ पर मिला आपको भगवान के चरण चिन्हों का दर्शन। और श्याम कुटी में जब भगवान एक बार गोपियों से मिल रहे थे, तब शंखचूड नाम का राक्षस वहां पर आया, जिसके शीश पर एक दिव्य शंख था, वरदान से प्राप्त किया हुआ। तो शंखचूड ने देखा, अरे इतनी सुंदर लड़कियां, इतना सुंदर श्रृंगार किए हुए, इतना अद्भुत सौंदर्य है उनका, और ये एक के साथ में मिल रहे हैं सब लोग मिलकर, मेरे साथ क्यों नहीं मिल रहे हैं? उसको ऐसा लग रहा था कि जो भी सुंदर वस्तु है मेरे लिए होनी चाहिए। तो उसने आया और उसने वो छीनने लगा, उनको लेके जाने लगा उनको। तब फिर देखा कि पहले तो मजाक मजाक में चल रहा था, लेकिन बाद में एक्चुअली पहले डराने का काम कर रहा था, लेकिन बाद में उठा कर ले जाने लगा, उनको किडनैप करने लगा। तो फिर भगवान ने कहा, अभी ज़्यादा हो गया, जरा थोड़ा कुछ इलाज करना चाहिए। तो फिर भगवान ने बलराम को बोला, आप गोपियों के संग यहाँ पर रहो, मैं इसको देखता हूँ। जैसे भगवान आने लगे तो वो भागने लगा, भगवान ने उसका पीछा किया, जाके उसको मार दिया, भगवान ने वध कर दिया उसका। वध करते उससे सर का जो शंख है ना, वो पूरा उखाड़ के लेकर आए। वो होता ना कोई उसका प्रूफ कि अभी अपनी हिरण को मारा हम जो, या शेर को मारा, तो क्या करते हैं उसका चमड़ी लेके आते हैं एज अ पुरस्कार, या तो एक मान चिन्ह होता है, तो भगवान उसका मणि निकाल के रखे और बलराम जी को भेंट दिया उन्होंने उसको सब गोपियों के सामने, और कहते हैं कि वही मणि आगे जाकर शमंतक मणि बना। ऐसा लंबा उसका यात्रा है, कहाँ से कहाँ गया वो, बाद में कहाँ पहुँच गया और क्या क्या कारनामे किए उसने, उसका भी वर्णन आता है। एनीवेज, तो ये शंखचूड़ कौन था? ये शंखचूड़ श्रीदामा था। श्रीदामा राधा रानी का बड़ा भाई, जब गौलोक धाम में एक बार उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, उसकी भी लंबी कहानी, टाइम होना चाहिए ना सबके लिए। तो वहाँ पर वो पैरे में था और राधा रानी भगवान को मिलना चाहती थी और भगवान विरजा गोपी को मिल रहे थे उस समय विरजा कुंज में। तो श्रीदामा ने भगवान के आदेश अनुसार राधा रानी को अंदर जाने नहीं दिया। राधा रानी लाखों पहियों वाले रथ में बैठकर, जिसमें रत्नों से जड़े हुए अनेक घंटियां थी और हजारों गोपियां उसके अंदर थी, ऐसे रथ में बैठकर बड़े धूमधाम से आई थी वहां पर, फिर भी उसको मना कर दिया गया। एक बार मना किया चली गई वो, अगली बार मना किया तो राधा रानी को गुस्सा आया, बहुत उसने कहा तू राक्षस बन जाओ, तो वो भी कुछ कम नहीं था। उसने कहा कि तेरे और तेरे प्रियतम का 100 साल तक पृथ्वी पर विरह होगा, मतलब पृथ्वी पर तुम्हारा भी जन्म होगा और तुम्हारा प्रियतम से 100 साल तक तुम विरह में रहोगी, ऐसे साफ दे दिया। तो वो शंखचूड़ बन गया। और 100 साल का विरह कब हुआ? जब भगवान यहाँ से मथुरा गए, द्वारका वगैरह गए, तो 100 साल नहीं 112 साल तक उनका विरह चलता रहा। और शंखचूड़ राक्षस बन के सीतामा आए थे और सीतामा के रूप में भी वहां पर थे, कृष्ण के साथ लीला कर रहे थे और राक्षस के रूप में भी लीला कर रहे थे, तो वो इधर लीला हुई थी इसकी। बहुत सुंदर सुंदर स्थान है यहाँ पर, चप्पे चप्पे पे लीला है। रूप गोस्वामी बताते हैं अपने नेक्टर ऑफ डिवोशन में 660 बिलियन होली प्लेसेस आर देयर इन ब्रज भूमि, 660 अब्ज पवित्र स्थान है। मतलब क्या, कण कण में लीला है यहाँ पर, लेकिन बहुत स्थान कलयुग में नजर से लुप्त हो गए हैं, कुछ कुछ स्थान ही बचे हुए हैं। देख लो, जब तक दिख रहे हैं तब तक देख लो, जब कल पोता को लेके आएंगे तो बोलेंगे यहाँ पर ना चरण चिन्ह हुआ करता था, अभी गायब हो गया है, ऐसा बोलना पड़ेगा आपको। हाँ, आज भी हम बोल रहे हैं ना, अभी आप हमारे साथ में आएंगे वृंदावन में तो मदन मोहन जी हम आपको लेके जाएंगे, वहाँ बताएंगे यहाँ पर ना प्रस्कंदन सरोवर हुआ करता था, जब 12 सूर्यों ने भगवान को उष्णता दिया तो भगवान को ठंडक लग रही थी तो उसमें से गर्म हो गए, फिर और सूर्य दिया तो पसीना बहा भगवान के शरीर से और वो पर्वत से नीचे उतर के जमा हो गया, उसका कुंड बन गया प्रस्कंदन सरोवर। आज किधर है वो? तो आज वाली कथा में बोलता हूँ मैं कि वो यहाँ पर हुआ करता था। उधर कामेवन में जाएंगे ना तो आपको मैं चरण पहाड़ी ले जाऊँगा और चरण पहाड़ी से दिखाऊंगा उधर ना लुकलुक कुंड हुआ करता था, अभी प्लॉट पढ़ के बिल्डिंग बन रही है। इसलिए आज जो है ना, होश में रहो, पूरी तरह सतर्क रहो और जो भी दिख रहा है उसको ग्रहण करो अपने रेटिना मणि दृष्टि पटल पे, उसको ग्रहण करो, परमानेंट सेव करो उसको, ताकि कम से कम लुप्त हो जाएगा तो मन में दर्शन करते रहोगे। जैसे हमारे मन में अभी भी प्रस्कंदन सरोवर है और लुकलुक कुंड भी है, ऐसा है कलयुग का, क्या करें। अभी एक समय था ऐसा कि सब स्थान लुप्त हो गए थे, पूरा ब्रज ही लुप्त हो गया था, फिर गोसाई लोग आए हमारे, फिर उन्होंने प्रकट किया, महाप्रभु चैतन्य आए, उन्होंने कुछ प्रकट किया। इसलिए आज जो दिख रहा है ना वो चैतन्य महाप्रभु और 6 गोस्वामियों की कृपा है हमारे पर, जो भी आज दिखाई पड़ रहा है। फिर आज बहुत संत हैं यहाँ पर, हाँ ब्रज के बहुत बड़े बड़े संत हैं, उन्होंने आज भी उसका जीर्णोद्धार किया है, जो नष्ट हो रहे थे स्थान, डर्टी गंदे हो रहे थे, उसको फिर जीर्णोद्धार किया है कई स्थान। अभी यहाँ पर आगे संकर्षण कुंड का भी अभी अभी जीर्णोद्धार हुआ है, बहुत सुंदर स्थान है, उसको हम ले जाएंगे आपको, बहुत ही सुंदर स्थान। लेकिन जितने साल मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, 30 साल तक वो एक गटर था, हम लोग जान परिक्रमा करते हुए उसकी ओर देख भी नहीं पाते थे, इतनी गंदी बदबू दूर से आती थी और हम लोग इसको बताते भी नहीं थे कि ये संकर्षण कुंड है। कैसे बताएंगे, कोई नया आदमी बोलेगा ये क्या, ये तो पवित्र कुंड है, पवित्र बोलते हो आप, ना गटर भरा हुआ है, गटर पूरा इतने साल तक। आज वो जगह है ना इतना बड़ा सुंदर रमणीय स्थान हो गया है, लोगों के भेंट करने लायक हो गया है, पिकनिक स्पॉट हो गया है, कुंड बन गया है। हाँ, 24 फुटी सॉलिड शंकरशन भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई है वहां पर। तो सब किससे होता है? संतों की कृपा से होता है। कोई भक्त जब तक मेहनत नहीं करता है ना, और संत उसको दिशा नहीं देते हैं, तब तक ये स्थान आपके लुप्त हैं। अभी आप यहाँ पर आते, रुक के कथा नहीं सुनते, अरे अच्छा पौंड है, थोड़ा मजा करने के लिए ठीक है, थोड़ा पिकनिक बना, वड़ा पाव खा लेते हैं इसके अंदर, क्या बात है, ठीक है। लेकिन संत के बिना इसकी महिमा कौन बताएगा आपको? कौन बताएगा उद्धव ने क्या किया यहाँ पर? तो संत जो है ना, वो उसका जीवन में होना बहुत आवश्यक है। बिना संत के अपने जीवन होने से कई सारे रहस्य जो आपके सामने प्रकट हो सकते हैं वो नहीं होंगे आपके लिए प्रकट। तो आगे ग्वाल पोखरा है ना। ग्वाल पोखरा इतना अद्भुत स्थान है, आज बहुत जीर्ण अवस्था में है, लेकिन इतना अद्भुत स्थान है कि श्री कृष्ण भगवान के साक्ष्य लीला का चरम स्थान है, वो नंबर वन का चॉइस का स्थान है भगवान का। अगर आप बोलेंगे आज कहाँ पर सखाओं के साथ खेलोगे, तो भगवान पहले ग्वाल पोखरा का नाम लेंगे। अपने सखाओं के साथ लीला करने के लिए सबसे प्रिय स्थान, सर्वोत्तम प्रिय स्थान जो है वो ग्वाल पोखरा है। नाम ही ग्वाल पोखरा है, पोखरा का मतलब जलाशय, पुकुर बांग्ला में, और ग्वाल यानी ग्वाल बाल। तो वहां पर क्या करते हैं भगवान, वहां पर जब मिलते हैं तो बहुत अद्भुत खेल खेलते हैं वहां पर। किसी का सीखा खींचते हैं, किसी का डब्बा छीन लेते हैं, किसी का दुपट्टा छीन लेते हैं, किसी का गेंद छीन लेते हैं, किसी का लड्डू छीन लेते हैं। हाँ, कभी मेंढक की आवाज़ निकलते हैं, कभी बंदर की आवाज़ निकलते हैं, कभी कूदते हैं, कभी पेड़ से नीचे कूदते हैं, पेड़ से ऊपर कूद जाते हैं, ऐसा अद्भुत काम करते हैं। कभी पक्षी की छाया है ना ऐसे आकाश में, उसका पीछा करते हैं, उसको पकड़ते हैं। पक्षी जो छाया जमीन पर गिर रही ना, उसके पीछे भागते हैं। कभी कूदते हैं मेंढक की तरह, कभी बाहर आते हैं, ऐसा बहुत ही चटपटा लीला करते हैं। देखो भगवान भी ना, सब जगह भगवान भगवान कह के रहते हैं ना, तो उनको भी जब लगता है कि भगवान के बिना रहने का भी कुछ आनंद है। भगवान नहीं हुए सोच के भी, अभी समझो प्रधानमंत्री को एक सॉक्स खरीदना है, तो जिस दुकान से आप खरीदते वहां आ सकते हैं क्या? वो कैसे आ सकते हैं? हम ज्यादा भाग्यवान हैं उनसे, हम कहीं भी किसी भी दुकान में सॉक्स खरीद सकते हैं, किसी भी ठेले पे खड़े होकर सिंघाड़ा खा सकते हैं। कोई सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं हमारे लिए, किधर भी जाओ कभी भी खाओ, रास्ते में खाओ, कुल्फी खाओ, भेलपुरी खाओ, टिक्की खाओ, बाकी बिहारी के किनारे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बड़े आदमी को टिक्की खाना है, बाकी बिहारी की खाना है, नामुमकिन है उसके लिए, है ना। तो भगवान जब भगवान बन के रहते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है, भाई क्या है? सब जगह पर ये ऐसे आगे पीछे सैनिक है, चितवारी बज रही, राजदंड है, वो सब तो दौंडी लगा रहे हैं, आ रहे हैं आ रहे हैं, शहनशाह भगवान। यहाँ पर अच्छा है, कहीं पंछी की छाया के पीछे भागो, कहीं पेड़ पे कूदो, बंदर की तरह कूदो, मेंढक की तरह कूदो। आपको पता नहीं होगा शायद, भगवान के समय ना ऐसे यहाँ पर पेड़ थे, ऐसे पेड़ थे नंदगांव से लेकर उसकी शाखा मथुरा तक पहुंची हुई है, ब्रांचेस गोवर्धन से नंदगांव एक शाखा, दूसरी शाखा मथुरा, दूसरी मतलब पूरा ब्रज ऐसा एक एक वृक्ष की भरा हुआ है। ऊपर से सब मंडप बना, मंडप इसकी शाखा एक इसका है, ये गोवर्धन वाले का है, एक शाखा किसकी है, नंदगा वाले की शाखा। और कई बार ना ग्वाल बाल इन शाखा के ऊपर चलते थे और नीचे गायें चलती थी, ऊपर से काउ हर्डिंग गौचारण, मन करा तो नीचे नहीं तो ऊपर, जमुना जी पार करना है तो भी शाखाओं से पार करना है, वहां से वहां जाना है जमुना जी पार करके, मानसिक गंगा पार करनी है तो उसके ऊपर से पार करनी। क्या अद्भुत जमाना था। देखो आप, कुछ पेड़ अभी भी थे लेकिन अभी तो क्या है, उसका गौरव जो है वो नष्ट होते जा रहा है। ऐसे अद्भुत अद्भुत पेड़ यहाँ पर हुआ करते थे और भगवान बड़ा अद्भुत आनंद लिया करते थे। कौन से ऐसे भगवान है जिन्होंने गोपियों का वस्त्र हरण किया है? कौन से ऐसे भगवान है जिसको मैया ने उखल से बांध के रखा है? कोई ऐसा भगवान? कौन से ऐसे भगवान जिन्होंने पर्वत को उठाया है? तो कृष्ण भगवान ने जो लीला किया है वो उसका कोई अवतार ने भी कभी तुलना नहीं कर सकते हम लोग। तो ग्वाल पोखरा में भगवान अपने सखाओं के साथ में आनंद लेते हैं। उसकी एक लीला मुझे याद आ रही है, वो ये है कि राधा रानी है ना और गोपियाँ, वो सब लोग सूर्य की पूजा करते हैं। आज कौन सा दिन है? शनिवार है। अरे ब्रज में आने के बाद समय का गिनती भी भूल जाते हैं, कौन सा दिन है क्या है कुछ समझ में नहीं आता है, सब सब एक बराबर हो जाता है सोमवार से लेकर शनिवार तक, क्योंकि तो भगवान है, उनका नाम है, उनकी सेवा है, उनका सानिध्य है, क्या करना है सोमवार मंगलवार से, वही दिन शुभ है जिस दिन भगवान का सानिध्य होता है, बाकी क्या करना है दुनिया में। तो फिर वो रविवार के दिन सूर्य की पूजा करते हैं, और हर एक गोपी को एक पंडा चाहिए उसके लिए, जाते कहां पर है सूर्य कुंड पे, अभी मैं आ रहा था ना रास्ता में तो मुझे मिला सूर्य कुंड, रास्ता में लेफ्ट टर्न था उसका सूर्य कुंड, उसका भी उद्धार अभी किया गया है। तो सूर्य कुंड पे वो अपना अपना पंडा ढूंढते हैं और सूर्य भगवान का पूजा करते हैं। उधर ना एक अद्भुत दर्शन है, सूर्य भगवान खड़े ऐसे, एक हाथ में चंद्र एक हाथ में सूर्य, लेकिन सूर्य भगवान नहीं है वो कृष्ण भगवान है, क्योंकि वहां जाकर सूर्य कुंड सूर्य देव की पूजा के बहाने राधा रानी कृष्ण से मिलती थी, बात करती थी, और कभी कभी वो उनकी सासू की जो होती ना स्पाई क्या कहते हैं गुप्तहेर, वो जाके पीछा करते थे। तो एक बार पीछा करते करते गए उधर तो अरे कृष्ण से बात कर रही है, मतलब कृष्ण का दर्शन दर्शन नहीं हो रहा है लेकिन बात जो हो रही है वो लगता है कृष्ण से ही हो रही है। तो झट से जाके बोलते हैं सासू जी को, आओ जल्दी, ननंद को सासू को लेके आते हैं, तभी बातें चल रही है, लेकिन हमारे कृष्ण भगवान तुरंत ही सूर्य देव का रूप धारण कर लेते हैं, मानो कि राधा रानी सूर्य देव से प्रार्थना कर रही है, सूर्य देव खड़े हैं। एक लीला है, दूसरे में वो सूर्य देव का विग्रह जो है ना उसके पीछे छुपकर बातें करते रहते, एक में सूर्य विग्रह ही बन जाते हैं। तो आज का दर्शन जो है वो सूर्य देवता का दर्शन नहीं है, वो स्वयं कृष्ण भगवान सूर्य देव का रूप धारण करके वहां खड़े हैं, अपनी लीलाओं का आपको अनुभव दे रहे हैं, है ना। तो ये एक दिन ढूंढ रहे अपना, लेकिन सबको पंडा मिला, राधा रानी को पंडा नहीं मिला। तो अभी भगवान ने कहा कि कुछ करना चाहिए, भगवान तो राधा कुंड पे थे, ये सूर्य कुंड में खोज चल रही है। तभी वो जटिला कुटिला जो सासू नंदी है ना वो भी परेशान हो गए, अरे क्या सबकी पूजा हो रही है हमारी बहू की नहीं हो रही, कैसा होगा, होना चाहिए। तो वो अभी बोलो ढूंढो, सबको भेजते हैं सब जगह, यहाँ नहीं तो कहीं और ढूंढो। तो खबर मिलती है कि राधा कुंड पे दो पंडा लोग फ्री है, तुरंत कृष्ण भगवान और मधुमंगल पंडा का रूप धारण करते हैं। मधुमंगल तो पंडा है ही वैसे, कृष्ण भगवान पंडा बन जाते, ब्रह्मचारी बन जाते और उसकी वकालत कर रहे हैं, बोल रहे है हमारा पंडा, लेकिन ना बहुत कठिन काम है आपके लिए, वो किसी भी स्त्री के हाथ का कुछ खाता नहीं, दर्शन भी नहीं करता उसका और दक्षिणा भी लेता नहीं, लेकिन बहुत कड़क नियम है उसके, वो चाहिए तो बता नियम बता देते हैं। तो बोला नहीं आज तो कुछ भी चलेगा, कैसा भी करके ले आओ उसको, सब बहुत मुश्किल बना देता कि वो डेस्परेट हो जाए। जटिला कुटिला राधा से भी अधिक डेस्परेट कौन होते हैं, जटिला कुटिला। वो जाके बोलते हैं कि हम आपको अंगूठी देंगे, हम आपको हीरे की अंगूठी देंगे, हम आपको हीरे जवाहरात देंगे, बोले हमको कोई मतलब नहीं इससे, ऐसे करके बहुत उनको फाइनली पैर पड़ते हैं उनके, बोले दूर से पैर पड़ना, उनको हाथ नहीं लगाना उनको, ऐसे करके बड़ा सीन बना के बड़ा ऐसा हाँ आडंबर खड़ा करके चले जाते हैं, सूर्यकुंड पहुंच जाते हैं। और ये असिस्टेंट पंडा है ही साथ में, वो सब दूर से बैठ के मंत्र बोल रहे हैं और ये अपना विधि जो है ना वो कर रहे हैं, प्रमुख पंडा वो हैं और ये यहाँ पर असिस्टेंट पंडा जो है वो एक्चुअली कार्य कर रहे हैं। बहुत समय होता है फिर तो उसको अंगूठी देते हैं तो वो ना बोल देता है, फिर मधुमंगल ले लेते हैं, फिर उसके बाद में लड्डू ला के देते हैं तो वो ना बोल लेता है, फिर वो मधुमंगल ले लेता है ना, बोला अच्छा है हमारा पंडा कुछ लेता नहीं है, आज तो चांदी है हमारी, लेते रहो सारा कुछ गहना वहना जो भी है ना मधुमंगल को मिलता है। मधुमंगल सोचता है कि अभी मैं खुद उसको खा लूँगा, तो कृष्ण भगवान अपना भेस भी छोड़ के जाते हैं बच्चों को खेलने में। तो ये मधुमंगल जो है ना वो राधा कुंड से यहाँ से खाते 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 आ रहे हैं, कुसुम सरोवर को पार करके ग्वाल पोखरा की ओर आ रहा है, उधर बच्चा लोग खेल रहे हैं, उधर कृष्ण बलराम देखते हैं उसको, अरे देखो मधुमंगल आ रहा है, झोली भर के लड्डू लेके खाते खाते आ रहा है, गले में इतनी माला पहनी हुई है हीरों की रत्नों की मानिकों की और इतनी धोती में ऐसा गांठ मार के लड्डू खाते आ रहा है। तो इशारा करते सब लोग ऐसे जाते गोल ऐसे पीछे से उसको घेरते हैं, उसकी धोती फाड़ते हैं, सब लट्टू गिर जाते हैं, सब लोग लड्डू उठाते हैं और ना भाग के खाने लगते हैं। वो बेचारा चिल्लाने लगता है, फिर उसका ये चुराते हैं, उसका वो चुराते हैं उसको, फिर वो आए तो उसको फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, इधर फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, मंगल इधर पागल हो रहा है, इतना परेशान करते हैं। पहले तो मोटे पेट वाला बेचारा ज़्यादा भाग नहीं सकता है वो, है ना, इसलिए वजन कम रखना चाहिए हमेशा, ध्यान रखना चाहिए। वजन कम होने से अच्छा रहता है, हाँ प्रभु जी, भागने में अच्छा रहता है जरा। तो भाग नहीं पा रहा है, चिना झपटी हो रही है, उसको परेशान किया जा रहा है, तो वो टॉयलेट करता है, तब तक तो लड्डू खा रहे हैं सब लोग। उतने में वो बोलता है, अब ये वापस शांत नहीं हो गए तो मैं जानी हूँ, ऐसा ऊपर रहते हैं, एक दोरी निकालते हैं, तोड़ दूंगा और शाप दूंगा सब लोगों को। तो फिर कृष्ण भगवान जाके सबको शांत करते हैं, मधुमंगल को गले मिलते हैं, बोलो मधुमंगल मैं संभाल लूंगा इनको, शांत हो जाएंगे। तो कृष्ण कहता है, सब लोग शांत हो जाओ और पीड़ा मत दो उसको। तो मधुमंगल फिर शांत हो जाता है, उसको बिठाते हैं, सब लोग उसको बिठा के अच्छी तरह भोजन कराते हैं, फिर वो बड़ा खुश हो जाता है, बोला दक्षिणा दो, तो दक्षिणा भी देते हैं उसको। अरे अकेला ब्राह्मण का बालक है ना वो, सब में भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है वो, तो उसको बड़ा शांत करके प्रसन्न कर देते हैं ब्राह्मण को। तो ये लीला भी ग्वाल पोखरा के किनारे हुई है, अरे ग्वाल पोखरा धाम की। अरे कभी भी हम लोग बच्चा बन जाए तो अच्छा है, वहाँ ज़्यादा आनंद आएगा आपको। बड़े एडल्ट बनकर वो कथा सुनोगे तो इतना नहीं आएगा, लेकिन बच्चा बन के जाओगे वहाँ पर तो सही में आनंद आएगा। हो सकता है कृष्ण भगवान भी आके खेलेंगे आपके साथ, हु नोज, यहाँ पर क्या होगा इसका भरोसा नहीं है। चलते चलते भी राधा रानी का दर्शन होगा आपको, भाव रखो ऐसा आप, हाँ भाव लेके चलो, दर्शन नहीं हुआ तो चलेगा, लेकिन भाव रखो कि ये जगह ऐसी है, यहाँ पर कदम कदम पर कृष्ण उपलब्ध हैं, अवेलेबल फॉर यू, श्रद्धा रखो, भाव रखो, ऐसे ही डोलो यहाँ पर, जैसे गोस्वामी लोग डोला करते थे, कृष्ण कृष्ण को पुकारते थे, कोथाए कृष्णा कोथाए कृष्णा। मधु पंडित महाशय, रूप गोस्वामी, लोकनाथ महाराज, भूगर्भ गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी पुकारते हुए घूमते थे यहाँ पर। ये पागल होने की वाली भूमि है, ऐसा ऑफिशियल अपना अटायर, ऑफिशियल भाव बनाने के घूमने की जगह नहीं है ये। साधु लोग बोलते हैं, सब टोपियाँ उतार के आ जाओ यहाँ पर, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई औरत है, कोई आदमी है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई धनवान है, कोई पढ़ा लिखा है, ये सब टोपियाँ उतार के आ जाओ, आत्मस्वरूप में आ जाओ और भगवान को पुकारो, फिर भगवान दूर नहीं है आपसे। जितना टोपिया पहनोगे उतना दूर चले जाएंगे। जितना टोपिया मतलब क्या, टोपिया मतलब गर्व, है ना, मैं डॉक्टर हूँ उसका एक गर्व, मैं धनवान हूँ उसका एक गर्व, मैं अधिकारी हूँ उसका एक गर्व, मैं अमुक हूँ अमुक, मैं चेयरमैन हूँ इधर का उधर का, हर एक चीज़ का एक टोपी, हर एक चीज़ का टोपी के साथ में गर्व। प्रॉब्लम उधर है ना, टोपी में प्रॉब्लम नहीं है, गर्व में प्रॉब्लम है, टोपी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब टोपियों को उनकी सेवा में लगा दो अच्छा है, लेकिन सब टोपियाँ अपनी अपनी बना के रखोगे तो हर एक टोपी आपको इतना इतना गर्व देगी, और हर एक यूनिट गर्व जो है वो भगवान से आपको दूर कर देगा। और भगवान को पास में आने के लिए आए हैं तो टोपियाँ को लेके आना है ना। अभी स्विमिंग को जाना है तो क्या सूट पहन के जाएंगे स्विमिंग में, मतलब स्विमिंग तो हम लोग स्विमिंग सूट में करेंगे, लेकिन स्विमिंग टैंक पर जाते हो सूट पहन के जाएंगे क्या? अरे वहाँ पर तो तैरने के लिए जाना है, ऐसा ही कुछ पजामा वगैरह पहनो, तलिया रखो, चलो, क्योंकि अपना फाइनल सब उतार के उतारना है पानी में। यही सोच के ब्रज में आओ, आप ब्रज में आ रहे हो ब्रज रस में नहाने के लिए, और इतनी सारी टोपियां पहन कर आ रहे हो, ऐसे ब्रज रस का आनंद मिलेगा? तैयारी करो पहले अपने आत्मा की, कैसे किस जगह पर क्या करने के लिए जाना है। भोजन के लिए जाना है तो घर से खा के जाओगे क्या आप? नहीं, बोला आज शाम को एकदम क्लोज फ्रेंड की शादी है तो सुबह से खाली गाजर और मूली खा के जाएंगे। शाम को ये तगड़ा काम हो जाए बढ़िया से एकदम, है ना। तो इस तरह से जो चीज़ करने जा रहे हो उसके लिए भावना बनाओ, उसके लिए मन बनाओ, तब जाकर फिर वो उसका लाभ होगा आपको। ब्रज में आओ तो ब्रज रस में डूबने के लिए आओ, सेवक बनकर आओ, दास दासानुबंध दास बनकर आओ, पुकारो भगवान को सब कुछ छोड़कर, असहाय होकर पुकारो तो मिलेंगे आपको। ये तो पुकारते रहोगे और वो मिलते रहेंगे आपको। मिले आपको फिर, ऐसा ही है। बोलो
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।